ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनि लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की मूल रूप से संसारी प्राणी अनादिकाल से प्रथम गुणस्थान में ही रहते हुए चला रहा है अपने आत्मगुणों की साधना करने का लक्ष्य जब बनाता है तब उस लक्ष्य को धर्म साधना का लक्ष्य बताया जाता है किसकी साधना करना धर्म की साधना करना धर्म की साधना का तात्पर्य अपने आत्मगुणों की साधना ये आत्मा के गुण पहले गुणस्थान में रहते रहते प्रकट नहीं हो सकते इसलिए अगले गुणस्थानों में बढ़ना कर्तव्य हो जाता है जो अगले अगले गुणस्थानों में बढ़ता जाता है वह धर्म की साधना में प्रौढ़ होता चला जाता है धर्म की शुरुआत चौथे गुणस्थान से हो जाती है धर्म क्या है रत्नत्र ही धर्म है फिर रत्नत्र यदि धर्म है तो तीनों का समावेश उसमें हुआ फिर चौथे गुणस्थान में तो तीनों नहीं हैं यदि तीनों नहीं हैं तो फिर धर्म की शुरुआत चौथे से कैसे हो गई तो ये औपचारिक बात है धर्म यानी रत्नत्र सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः सदृष्टि सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान वृत्तानि चारित्र धर्मम यही धर्म है धर्मेश्वरा विदुः धर्म के ईश्वरों ने ऐसा कहा है जो धर्म के अधिपति तीर्थंकर भगवान हैं उन्होंने ऐसा कहा है तो इसमें तो ये ही उल्लेख है ना तीनों का समावेश ही धर्म है पर चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो ही हैं तीसरा तो उसमें है ही नहीं फिर धर्म की शुरुआत चौथे से हुई ये कैसे कहेंगे हम हाँ दो रत्न प्राप्त हो गए किंतु ये रत्न तो ही धर्म नहीं कहलाते। धर्म की जो पूर्ण परिभाषा है वो रत्नत्रयस्य है। ये दो जहां हैं वहां धर्म की भूमिका होती है, धर्म नहीं होता। जिसे धर्म कहते हैं वो चारित्र है, वस्तुतः चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र ही वस्तुतः धर्म है, खलु वस्तुतः चारित्रम खलु धम्मो, वस्तुतः चारित्र ही धर्म है। किंतु उस धर्म को जीवित करने के लिए ये दो सहयोगी हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। चारित्र धर्म को जीवित करने के ये दो साधन हैं। क्या ये समझें कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हो सकती है? क्या ये समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। सम्यक दर्शन चारित्र का प्राण है, सम्यक ज्ञान चारित्र का प्राण है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा प्राण है, मनुष्य किसका नाम? जो दिख रहा है उसका नाम है क्या? लेकिन लोक व्यवहार में तो यही कहा जाता है, जो दिखता है वही मनुष्य। परंतु असल में मनुष्य ये नहीं है। मनुष्यायु मनुष्य गति का बंद करके जो आ रहा है वो मनुष्य, आया है वो मनुष्य। आत्मा मनुष्य है। जब तक उसके पास मनुष्य गति और मनुष्यायु का बंद रहेगा, अस्तित्व रहेगा, तब तक वो मनुष्य ही है। कोई भी आयु का बंध न हो तो वो तो सिद्ध भगवान है। फिर कोई भी आयु का बंध ही न हो तो सिद्ध परमेष्टि। चार आयु अगर नहीं है तो कौन है वो? चार आयु अगर नहीं है तो कोई कर्म रह ही नहीं सकता। अन्य आठ कर्म में से जो शेष कर्म है आयु कर्म को छोड़कर, सात कर्म तो रह ही नहीं सकते। मनुष्य किसका नाम? जिसके पास मनुष्य आयु का बंद हो चुका है, मनुष्य आयु को बंद करके यहाँ आ रहा है, आया जन्मा, उसका नाम मनुष्य है। तो आत्मा का नाम मनुष्य है। यहाँ जिसको मनुष्य आयु का उदय है वो मनुष्य है। देवायु की सत्ता हो, मनुष्य आयु का उदय हो तो देव नहीं है। देवायु की सत्ता हो सकती है, मनुष्य आयु का उदय है तो क्या उसको देव कहेंगे? वो कर्म उदय में आने के बाद ही आत्मा देव। देवायु का उदय होने पर देव, मनुष्यायु का उदय होने पर मनुष्य, नरकायु का उदय होने पर नारकी, तिर्यंच आयु का उदय होने पर तिर्यंच। कर्म के कारण से हम मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव आदि हैं। परंतु वस्तुतः देखो तो हम न देव हैं, न मनुष्य हैं, न तिर्यंच हैं, न देव हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। परंतु हमें मनुष्य कब कहा? मनुष्य आयु के उदय से मनुष्य कहा। तो हमें ये समझना है, चारित्र वस्तुतः धर्म है। उसमें जान डालने वाला ज्ञान और दर्शन। चारित्र में जान आ गई तो फिर उस चारित्र से ही मोक्ष होगा। समस्त कर्मों का नाश जो होता है वो चारित्र से होता है। क्या चारित्र के बिना हो जाएगा? यदि ऐसा भी संभव होता कि सम्यक तो और ज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी यदि संभावना होती तो चौथे गुण स्थान को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो अनादिकाल के इतिहास में कोई न कोई अवश्य ऐसा एक जीव, अवश्य कोई न कोई ऐसा एक जीव चतुर्थ गुण स्थान से कर्मों को नाश करके मोक्ष चला गया होता। हाँ, जाता कि नहीं जाता? जाता। क्या सम्यक दर्शन और ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। ये प्राण है, इसके लिए ढांचा भी तो चाहिए, शरीर है। शरीर को प्राण कब कहेंगे? जब भीतर आत्मा हो। चारित्र हमारा शरीर है और दर्शन और ज्ञान ये दोनों प्राण हैं, आत्मा। आत्मा के बिना शरीर नहीं मिलता, ये सत्य बात है कि नहीं? आत्मा ही ना हो तो शरीर किसको मिलेगा? आत्मा को ही शरीर मिलता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को ही चारित्र मिलता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दोनों आत्मा हैं, आत्मा के समान हैं। यही दो ना हो तो चारित्र को क्या जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये जान है दोनों, ये जान किसमें डालना पड़ेगा? शरीर, चारित्र रूपी शरीर में ये दर्शन और ज्ञान के जान को डालना पड़ेगा। हाँ, चौथे में आना जरूरी थोड़ी है। काय को बीज बोएंगे? पहले इस खेत में बीज बोएंगे, फिर बाद में उस खेत में बीज बोएंगे, जरूरत क्या है? सीधा डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान, बीज भी वहीं बोना और खेत को भी वहीं पाना। हमको ये समझना है, चारित्र ही कल्याणकारी वस्तु है। चारित्र को अपनाना बहुत आवश्यक है। दर्शन और ज्ञान को लेकर के हम बैठ जाएंगे तो केवल चर्चा में बैठ सकते हैं, अर्चा नहीं होगी। और ऐसी चर्चा कितना भी कर लो, सागरोपम तक, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागरोपम तक दर्शन और ज्ञान को लेकर के चर्चा करते हुए बैठते हैं, उनका कोई कल्याण हो रहा है क्या? वहाँ से तो मोक्ष बहुत पास है सिद्ध भगवंतों का, क्यों नहीं जाते वहाँ? हाँ, चारित्र नहीं है, इसलिए भगवंतों ने कहा चारित्रम खलधम्मो। आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, भरत चक्रवर्ती, ये सब सर्वार सिद्धि में थे। चक्रवर्ती बनने से पहले, कामदेव बनने से पहले, तीर्थंकर बनने से पहले वहीं पास में थे क्या? नहीं, सिद्ध भगवान के पास वहीं, सिद्धशिला बहुत पास पड़ता है। यहाँ मध्यलोक में आने आकर के जन्म लेने की क्या जरूरत थी? तो सर्वार सिद्धि के देव भी कहते हैं ये दर्शन ज्ञान किसी काम के नहीं है, इसकी चर्चा तो हम 33 सागरोपम तक करके देखे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं मध्यलोक में तो जाना ही पड़ेगा, अयोध्या जाना ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जन्म लेना ही पड़ेगा, यूपी में जाना पड़ेगा, वहीं बैठ करके कितना भी बजाओ पीपी मोक्ष नहीं मिलने वाला है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। उस चारित्र को सप्राण करना है, उसमें प्राण भरना है। काय से भरोगे? दर्शन और ज्ञान को साथ लेकर के चारित्र को जगाओ। चारित्र की शक्ति अगर जग गई तो निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा चारित्र से होती है या केवल सम्यक दर्शन और ज्ञान से? संपूर्ण कर्मों की निर्जरा, चारित्र से। सम्यक दर्शन संवर का कारण बन सकता है और एक देश निर्जरा का भी कारण बन सकता है। एक देश संवर और एक देश निर्जरा से क्या निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी? कुछ कर्मों का संवर और उन्हीं कर्मों की एक देश निर्जरा अवश्य है चौथे आदि गुणस्थान में। क्या चौथे गुणस्थान से मोक्ष पाओगे? जिनेंद्र भगवान के सात तत्वों की चर्चा करो और कुछ नहीं करो, चौथे गुणस्थान में रहो, क्या मोक्ष होगा? नहीं, होता तो बहुत अच्छा था, हम दीक्षा ही नहीं लेते। हम भी सोच रहे थे ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या, हमको नहीं मिला इसलिए दीक्षा लिए। शॉर्टकट किसको नहीं चाहिए है? कम खर्चा में प्लाट मिल सकता है तो किसको नहीं चाहिए? सब पहले खोजबीन करके रखते हैं ना, लास्ट में कोई मार्ग ना हो तो फिर तो कुछ ना कुछ करके लेते हैं, कुछ ना कुछ करके लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम अपना लाइफ बना सकते हैं। हम अपने आत्मा में जान डंस डाल सकते हैं, माहौल रहेगा, स्वाध्याय रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि देवों जैसे विमान में रहेंगे हम हा? और घंटी बज गई तो स्वाध्याय के लिए जाना है, स्वाध्याय समाप्त हो गया तो विमान में चढ़ के बैठना है, नंबर के अनुसार स्विच दबा दिया तो सुई जा करके छोड़ देगा। विमान ही तो है आप लोगों का, यहां इस विमान में बैठ करके हमें करना क्या है? क्या केवल सम्यक दर्शन और ज्ञान की साधना करना है? वो तो है ही, अभी भी ये दो तो कहीं भी मिल सकते हैं। यदि हमारी आत्मा नरक में भी है तो दर्शन और ज्ञान सुलभ है, वहां भी प्राप्त हो सकते, देवगति में है वहां भी, त्रयंच गति में है वहां तो सुलभ है ही, पर चारित्र दुर्लभ है। किस गति में होगा ये? मनुष्य गति में। भगवंतों ने चार धर्म बताए, चार पुरुषार्थ थोड़ा सा बता दूं इस बारे में, क्योंकि पिंछी परिवर्तन का समय आ रहा है, भूमिका तो बनानी पड़ेगी। और व्रत आदि जो होते हैं स्व इच्छा से हो, ये अमृत है। ऐसा भी ना हो कि पीछे मिलती है इसलिए, तो ये भी कामना हो जाएगी। और ऐसा ना हो कि पीछे की वजह से ले लिया और शल्य बन जाए वो, पीछे देना है या पीछे लेना है, इसको लेकर के आप आसक्त तो हो गए। चारित्र वैसे लेने की विचार नहीं थे, लेकिन पीछे मिल रही है इसलिए ले लिया। जैसे किसी अज्ञानी जीव को चार गति का वर्णन सुनाया और देवगति का वर्णन सुनाया तो देवगति से प्रभावित हो गया, और फिर लास्ट में उसको कह दिया कि देवगति तो ये चारित्र का फल है, पुण्य का फल है, मोक्ष मार्ग में चलने का फल है, चारित्र धारण करो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग से आकर्षित होकर के चारित्र ले लिया। तो क्या चारित्र, सम्यक चारित्र उत्पन्न होगा जीवन में? जो चारित्र लिया जाता है वह किसी वस्तु के लोभ से नहीं, कर्म निर्जरा की इच्छा से, टारगेट की सिद्धि के लिए। टारगेट में क्या हो? मोक्ष, कर्म निर्जरा। और इस बीच में अगर पीछे मिल जाती है तो बात अलग, वो तो गिफ्ट है, जाते जाते एक सम्मान है। आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आप निर्दोष साधक हैं, तो ये लो, आपके लिए दिया देना उचित है, क्योंकि भविष्य में काम में आ सकता है। संयमी को क्या काम में आएगा? असंयमी लेकर के क्या करेगा? घर साफ करेगा? ये तो जीवों की रक्षा का उपकरण है, इसको देख देख करके हमें शिक्षा मिलती है। घर में रखने से क्या फायदा? तो फायदा ये है कि उसको देखते ही संयम के परिणाम आते हैं, बुरे परिणाम निकल जाते हैं। जब भी गुस्सा आएगा पीछे की तरफ देखो गुस्सा में, जब भी धन संपत्ति इत्यादि में उलझ करके उससे अभिमान उत्पन्न होगा तो पीछे की तरफ देखो, अभिमान निकल जाएगा। जब भी आपको किसी वस्तु के प्रति लोभ हो गया, उसको पाने की इच्छा होने लगी, तो पीछे की तरफ देखो, वो इच्छा समाप्त हो जाएगी। पिंछी से शिक्षा मिलती है, अपने परिणामों को सुधारने का संस्कार बढ़ते हैं उसको रखने से, और आत्मा को संस्कारित करना सबसे बड़ी बात है। ये हमारा सबसे बड़ा काम है जीवन काल, ये काम तो बिरले ही जीव कर पाते हैं। संसार में सब इंद्रिय विषयी हैं, भोगी हैं, वो धर्म का काम नहीं कर पाते। धर्म करने वालों की भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि जीव आसक्त है। किसमें आसक्त है? इंद्रिय विषयों में। ये इंद्रिय विषय उनको कैसे लगते हैं पूछो उनसे, कैसे हैं ये इंद्रिय विषय? गोड़ गोड़ शर्विल जैसा। शर्विल को पूछा कि दगड़ कसा है, तो कुछ गोड़ गोड़ बहुत अच्छे से बताते, दगड़ भी गोड़, दगड़ कैसे गोड़? इंद्रिय विषयों की कीमत दगड़ के समान है, और संयम की कीमत रत्न के समान है। क्या चाहिए, पत्थर चाहिए या रत्न चाहिए? रत्न का व्यापार करना है, और रत्न व्यापार हो इसलिए हमें चार पुरुषार्थ को अच्छी तरह से समझना है। चार पुरुषार्थ होते हैं, पहला कौन सा? धर्म पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ बहुत एकाग्रता से सुनना है, बहुत मार्मिक बात, नई बात खुलती जा रही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम कहां जन्मे हैं? आर्यखंड में। आर्यखंड में जन्मे हुए भव्य जीवों के लिए ही इन चार पुरुषार्थों का उपदेश है, स्वर्ग के देवों को नहीं, भौभूमि के जीवों को नहीं, और मलिच्छखंड के जीवों को भी नहीं, और नारकियों को भी नहीं। चार पुरुषार्थों का जो उपदेश है वो केवल आर्यखंड के भव्य जीवों को, उसमें भी विशेष रूप से मनुष्यों को, त्रिरंचों को नहीं। पहला पुरुषार्थ का नाम है धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ तो धर्म पहले नंबर में क्यों आया, प्रश्न उठता है। इसको यहां रख सकते थे तीसरे नंबर में। अर्थ काम धर्म और मोक्ष, धर्म के द्वारा मोक्ष मिलता है, तो पहला धर्म फिर बाद में मोक्ष। धर्म मोक्ष का साधन है, तो साधन पूर्वक ही साध्य की प्राप्ति होती है, तो तीसरे नंबर में क्यों नहीं रखना चाहिए था? लेकिन महापुरुषों ने ऐसा उपदेश नहीं दिया। ये जो क्रम रखा है बहुत अर्थपूर्ण है, ये जो क्रम रखा है ये बहुत 100% मार्मिक है, इसमें रहस्य है, सत्यता है। धर्म को प्रधानता दी, क्यों दी? क्योंकि ये आर्यखंड है। आर्यखंड में जन्मने वाले जीव को क्यों जन्म मिलता है? धर्म करने के लिए मिलता है, इसलिए धर्म पुरुषार्थ प्रधान है प्रथम। फिर होता है अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। तो ये अर्थ किस लिए, अर्थ की कमाई किस लिए? धर्म के लिए। अर्थ किस लिए चाहिए? धर्म के लिए चाहिए, इसलिए कमाओ अर्थ को। अज्ञानी जीव अर्थ कमाते हैं, अर्थ में आसक्त रहते हैं, अर्थ में डूब जाते हैं, यही तो अनर्थ है। पुरुषार्थ को समझते नहीं, यही तो अनर्थ है। चार पुरुषार्थ है, समझ करके अर्थ पुरुषार्थ करो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें दूसरे नंबर में अर्थ रखने का कारण यह है कि यह आर्यखंड धर्म करने के लिए ही मिलता है, विषय भोगों के लिए नहीं। अर्थ विषय भोग की वस्तु भी बन सकती है, अर्थ धर्म का साधन भी बन सकता है, उसका यूज दोनों तरफ हो सकता है। आपका चश्मा दोनों तरफ काम में आ सकता है, इससे शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, इससे पिक्चर भी देख सकते हैं। क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, चश्मा को किस काम में लेना है, स्वाध्याय के काम में लेना है, भगवान के दर्शन के लिए काम में लेना है। तो चश्मा जो मिला है किसके लिए मिला है? भगवान के दर्शन के लिए। चश्मा जो लगाया है स्वाध्याय के लिए, ये लगाना चाहिए। विषय कषायों को देखते समय उसको निकाल के रख दो, दिखेंगे ही नहीं वो। क्या विषय कषायों को देख रहे? चक्षु इंद्री का विषय, ये दुनिया, ये पिक्चर, ये चित्र, इसमें आसक्त क्यों? क्या आवश्यक है? ये जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ है कि हम इस चश्मे का उपयोग चित्र देखने के लिए कर रहे हैं, यही तो पागलपन है, यही तो अनर्थ है, यही तो अज्ञानता है, यही बचखाना है, अज्ञानता है, ना समझ। ये जो आर्यखंड मिला है ये धर्म के लिए मिलता है, ये कलम लागू है। आर्यखंड में जन्मे हैं इसका तात्पर्य ये है कि तुमको धर्म ही करना चाहिए, विषय भोग नहीं। विषय भोग के लिए धर्म व्यवस्था करेगा, चिंता मत करो। पर आर्यखंड में आए हो, जन्मे हो, तो क्या करना? धर्म ही करना। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसा क्रम रखा है। आर्यखंड में जन्मे हैं तो यह जन्म सार्थक बनाओ, सार्थक बनने के लिए ही ये मिलता है। स्वर्ग क्यों मिलता है? भोग भोगने के लिए, भोग भोगने का जेल है। भोग भूमि क्यों मिलती है? भोग भोग के लिए, वो उसका जेल है। भोगों के जेल दो हैं, देवगति और भोग भूमि और नरक, वो भी तो भोग भूमि है। कैसी भोग भूमि? दुख का भोग भूमि, सर्वथा दुख। दुखों को भोगने के लिए कहां जाओ? नरक में जाओ। तो दुख की भोग भूमि कर्म भूमि नरक, दुख की भोग भूमि नरक है, सुख की भोग भूमि स्वर्ग और भोग भूमि दो। मोक्ष तो इन सब से अलग है, इन सब से दूर है, वो अलिप्त है। भोग का मतलब है यहां इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख, स्वर्ग में है, भोग भूमि में है और इंद्रियों का दुख नरक में है। नारकी जीव जो इंद्रियों के दुखों को भोगता है, वैसा उत्कृष्ट दुख यातना और किसी गति में नहीं। वो पाप का फल नरक में और पुण्य का फल स्वर्ग में और भोग भूमियों में। ये आर्यखंड योग साधना के लिए मिलता है। मेरा कहना क्या है, सार निकाल करके आपको भोजन दे रहा हूं, अमृतमय भोजन। ये क्यों मिलता है, इतनी चेतना जगा रहा हूं। आर्यखंड योग साधना के लिए मिलता है, भोग साधना का स्थान ये नहीं है। तो फिर महाराज जी तीसरे पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ क्यों रखा? तो रखा है, उसका भी सुनाता हूं, सुन लो ना। क्यों रखा है? तो इसलिए रखा है, आर्यखंड में यदि काम पुरुषार्थ का विधान न होता तो आर्यखंड में लोगों का जन्म ही नहीं हो सकता, लोगों का भव्य जीवों का जन्म ही नहीं हो सकता। उपवाद शया तो यहां है नहीं कि ऐसे ही उत्पन्न हो जाओ। तो काम पुरुषार्थ भी कितना, क्यों, कैसे, किस लिए, तो महापुरुष समझाते हैं। काम पुरुषार्थ तो केवल दीपक जलाने के लिए, ये मोक्ष जाने की परंपरा शाश्वत चलता रहे। ऐसे ही जाओगे तो फिर मोक्ष कौन जाएगा? आपकी परंपरा में मोक्ष जाने का विच्छेद हो जाएगा, आपके वंश में, आपके कुल में, आपके परिवार में। आपको यदि आपके वंश में मोक्ष जाने की परंपरा को शाश्वत बनाए रखना है तो कुल दीपक को जला के जाना पड़ेगा। पर यह भी कोई अनिवार्यता नहीं कि करना ही चाहिए, ना करो। तीर्थंकरों में पांच तीर्थंकरों ने ऐसा सोचा कि हमें कोई पीछे की चिंता नहीं, धर्म अर्थ डायरेक्ट मोक्ष। पांच तीर्थंकर ऐसे चले गए, सीधा गए, काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया। विवाह जो होता है वो दीपक जलाने के लिए मात्र होता है, विषयों के लिए नहीं, विषय संतुष्टि के लिए नहीं। ये विषय संतुष्टि यहां करना, या तो यहीं पर आप स्वर्ग के सुख को भोगना शुरू कर दिया, अभी स्वर्ग मिला ही नहीं, शुरू हो गया। ये काम तो ऊपर है, ये काम तो भोग भूमि में, ये तो योग के लिए मिला है, योग की साधना करो। तो काम पुरुषार्थ क्यों, किस लिए, इतना तो समझ में आता है ना। इसलिए कि हम मोक्ष जा रहे हैं तो हमारे कुल परंपरा में मोक्ष मिलता रहे, हमारे पीछे एक दीपक जला के जाएं। पीछे वाला, हमने जिस दीपक को जलाया वो दीपक दूसरे दीपक को जलाता है नहीं जलाता है इसकी चिंता हमें नहीं है, पर हमारा ये अनुराग है, इस आर्यखंड को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। एक दीपक जला के चले गए। तो महाराज आदिनाथ भगवान ने तो 100 दीपक जलाए, ये क्या, इसको क्या कहोगे आप? तो एक ही जलाना ये कोई थोड़ी अनिवार्यता थोड़ी है। कोई 10 जलाता है, कोई 1 जलाता है, कोई 100 जलाता है, कोई जलाता भी नहीं है। जलाने वाले जलाते हैं, नहीं जलाने वाले नहीं जलाते। पर यहां आर्यखंड में जलाने वाले भी रहेंगे, नहीं जलाने वाले भी रहेंगे, दोनों नियम व्यवस्था ऐसी, जलाने की अनिवार्यता भी नहीं। और दीपक जलाना ये कोई बड़ा अपराध नहीं, ये काम पुरुषार्थ अनर्थ का पुरुषार्थ नहीं, काम पुरुषार्थ अलग बात है और इंद्रिय विषय अलग बात है। इंद्रिय विषय का सेवन ये अनर्थ है, काम पुरुषार्थ अनर्थ नहीं। काम पुरुषार्थ तो उसके पीछे एक सद्भावना छिपी, पर विषय कषायों के पीछे क्या सद्भावना छिपी? वो पाप है, विषय कषाय पाप है। काम पुरुषार्थ पाप नहीं, विषय कषाय का सेवन पाप है। क्योंकि जिसके पीछे सद्भावना छिपी रहती है वो पाप नहीं हो सकता, वो कर्तव्य हो सकता है। मैं आर्यखंड में जन्मा हूं तो एक दीपक रख कर जाऊं, ये सद्भावना है और कर्तव्य भी है। ये कर्तव्य अलग बात है और विषय सेवन अलग बात है। हमें यह पुरुषार्थ करना चाहिए कि आर्य खंड में जन्मे हैं तो आर्य खंड के अनुकूल ही हम रहे, उसके संविधान के अनुकूल रहे। आर्य खंड के जो कलम हैं उसका उल्लंघन तो मत करो। आर्य खंड पवित्र भूमि, यहाँ निरंतर मोक्ष मिला है, मिल रहा है, मिलता ही रहेगा। ऐसी पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये कम नहीं है। इस भूमि में, भूमि पर तरस जन्म लेने के लिए देव भी तरस रहे हैं, नारकी भी तरस रहे हैं, त्रिरंश गति के जीव भी तरस रहे हैं, म्लेच खंड के मनुष्य भी तरस रहे हैं और कुभो भूमि आदि भूमियों के जीव भी तरस रहे हैं। सब यहीं आना चाहते हैं, इसी पार्क में तो मोक्ष मिलने वाला। आर्यखंड पार्क, आर्य पार्क है ये, यहां आना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आर्यों का पार्क, म्लेच्छ पार्क, आर्य पार्क, स्वर्ग पार्क, भोगभूमि पार्क, नरक पार्क, किस पार्क में आना चाहते हैं भव्य जीव? आर्य पार्क में आना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्क में ही आने पर पार हो सकते हैं, इसलिए भव्य जीव यहीं आना चाहते हैं। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हमारा जीवन का मुख्य कर्तव्य, इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए धन का अर्जन होता है, ये अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म के लिए धन है, अर्थ है, न कि अर्थ के लिए धन है। अर्थ पुरुषार्थ करते समय याद आना चाहिए, मैं क्यों कमा रहा हूं इतना, मेरा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, चिंतन आना चाहिए। ये इतना समझ में आ गया तो हो गया। धर्म को जीवित रखना है इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, मैं करूंगा। और सही है, यहां पर दो धर्म हैं, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। मुनि धर्म में, मुनि धर्म है वहां पर धर्म और मोक्ष के अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मुनि धर्म में तो दो पुरुषार्थ नहीं है, श्रावक धर्म में वहां चारों हैं। लेकिन सिद्धि, धर्म की भी सिद्धि नहीं हो सकती। धर्म के लिए अर्थ कमाता है पर धर्म की सिद्धि हो सकती है क्या? धर्म यानी तीन, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की सिद्धि हो जाएगा क्या घर में रहते हुए? नहीं होगा। पर धर्म को टिकाने के लिए, धर्म यानी तीन, दो नहीं, धर्म को टिकाने के लिए वह अर्थ पुरुषार्थ करता है और उस ओर बढ़ने के लिए यह अर्थ पुरुषार्थ करता है, और अर्थ पुरुषार्थ जिसमें धर्म धारण करना है ऐसा यह भौतिक शरीर आत्मा के लिए एक आधारभूत है। इस भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस भौतिक शरीर को टिकाए रखने के लिए अर्थ की कमाई करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है। तो लक्ष्य क्या हुआ? भौतिक शरीर को टिकाना है। तो भौतिक शरीर को क्यों टिकाना है? धर्म को टिकाने के लिए इसको टिकाना है, धर्म को टिकाने के लिए इसको टिकाना है। और ये कुछ भी मालूम नहीं है और अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका कोई ठिकाना नहीं। किस लिए टिकाना है यही मालूम नहीं तो उसका कोई ठिकाना नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप ऐसा भी निकल सकते हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष। महावीर भगवान ने ऐसा ही किया, पांच तीर्थंकरों ने ऐसा ही किया, आचार्य श्री ने भी ऐसा ही किया, अपन ने यह अनुकरण किया, ऐसा ही किया। क्या जरूरत है बीच में जाना? अनावश्यक। जलाने वाले जला रहे हैं, हमको नहीं जलाना है। चिंतन तो है। ज्यादा से ज्यादा सुख किसमें? निर्विकल्पता में। तो ये विकल्प क्यों बीच में? कि एक दीप भी जलाना है कोई जरूरत नहीं, इसका कोई कलम नहीं आर्यखंड में कि आपको एक दीपक रख करके ही जाना पड़ेगा, ये कलम लागू नहीं किया गया। इसलिए पांच तीर्थंकर निकल गए, कलम नहीं था इसलिए तो स्वीकार नहीं किया तीसरे पुरुषार्थ को, तीसरे नंबर के पुरुषार्थ को। तो ठीक है, जिसने स्वीकार कर लिया कर लिया। दीपक जल गया कि नहीं? जल गया। किसी का एक जला, किसी के दो जले, किसी के बिल्कुल नहीं जले, जलाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं जले, ऐसा भी तो होता है। ऐसा भी है। संसार में जो समस्याएं हैं वो सब कर्मों के वजह से हैं। कोई जलाना चाहता था नहीं जला पाए, कर्म का उदय। कोई जलाना चाहता था बहुत अच्छा दीपक जलता रहा और उसकी ज्योति भी अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका भी ये भाग्य है, ये भी कर्म का फल है। और जलाया था बुझ गया तो क्या करोगे, वो भी कर्म का फल है। सब कर्मों की देन। आप क्या कर सकते हैं? कर्मों के हाथों की कठपुतली बने, आपके हाथ में कुछ नहीं। धर्म और अधर्म ये दोनों ऐसे हैं, आपकी व्यवस्था, भविष्य की व्यवस्था ये दोनों करते। धर्म भी आपकी व्यवस्था करता है, धर्म ही आपकी व्यवस्था मतलब कर्मों की अपेक्षा से भी व्यवस्था करता है और धर्म सुख इत्यादि की अपेक्षा से भी व्यवस्था करता है। आपको मोक्ष मिलने वाला है, ये किसकी व्यवस्था है? किसने व्यवस्था की आपकी? धर्म ने व्यवस्था की। हमारे रत्नत्रय रूप धर्म ने ही व्यवस्था कर दी कि आपको मोक्ष गारंटी मिलेगा, चिंता मत करो, मांगे बिना मिलेगा। कर्तव्य करो, धर्म करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे संभालो, मैं रत्नत्रय हूं, मुझे संभालो, मोक्ष की चिंता मत करो। तो हमने संभाल लिया रत्नत्रय रूपी धर्म को, पर उस धर्म ने क्या किया? जिसको आपने मांगा नहीं था उसकी भी व्यवस्था कर ली, क्योंकि जाते जाते रास्ते में यात्रा करते करते भूख लगी तो कहीं बैठ करके खाने की भी जरूरत है ना आपको, साथ में कुछ बांध बूंध करके देते हैं, ले जाना साथ में। और जो तुम मरण के पश्चात भी तुम्हारे साथ जो आ सकता है उसको दे रहा हूं, उसको ले जाना। मरण के काल में आता क्या है? पुण्य और पाप के अलावा कुछ भी नहीं आता। जितना आपने कमाई की उतना ही आने वाला है, और जिसकी कमाई नहीं हो पाई वो भी नहीं हो पाई तो दूसरा आएगा, फिर धर्म की कमाई नहीं की तो पाप आएगा। तो अधर्म की हमने कमाई की, तो अधर्म कहता है हम भी इंतजाम करेंगे आपका, क्या करेंगे, पाप का इंतजाम करके रखेंगे, आप साथ ले जाना, और ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य पूरा करता ही हूँ, ये कलम है मेरा और करना ही पड़ता है, कलम के अनुसार चलना पड़ता है, संसार की व्यवस्था है, सृष्टि का नियम है। अधर्म पाप की व्यवस्था करता है और संसार दुखों की व्यवस्था करता है, दो की व्यवस्था ये भी करता है, और धर्म संसार के सुखों की भी व्यवस्था करता है और मोक्ष सुख की भी व्यवस्था करता है। क्यों? क्योंकि तुम आर्यखंड में जन्मे हो, तुम्हारा सनन वज्रषभ नारायण सनन नहीं है, और अन्य सननों से तुमने धर्म धारण कर लिया, रत्नत्रय का पालन कर लिया, तो मैं तुम्हारे साथ क्या भेजूं, इंतजाम तो करूंगा ना। तो धर्म इंतजाम करता है, क्या करता है, स्वर्गीय सुख का बीच में जरा विश्राम लेना, मोक्ष वहां से पास है, जाना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा ही घुमावदार रास्ता है, एक बार ऊपर जाकर फिर नीचे आना पड़ता है, तो जहां पर तुम ऊपर जाओगे बैठोगे स्टेशन पर, तुम्हारे लिए इंद्रिय सुख मिलेंगे, घबराना नहीं, शरीरधारी रहोगे तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो धर्म चलाने के लिए तुम्हें इंद्रिय सुख विषय कषायों की व्यवस्था वो भी करता है, विषयों की व्यवस्था नहीं कर रहा है क्या, कर रहा है, पुण्य क्या करता है, विषयों की व्यवस्था करता है, तो वहां बैठ करके तुम आराम से रहना जब तक शरीरधारी हो, वहां पर भी धर्म नहीं छोड़ना, सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों वहां रहेंगे, उसके पालन के लिए तुमको ये दिया गया है, ये अच्छा विमान रहेगा, अच्छी धन संपत्ति, इतनी सारी अप्सराएं रहेंगी, इतने सारे वैभव रहेंगे, और धर्म की चर्चा करते हुए वहां बैठे रहना, विश्राम लेना, विश्राम के बाद यहां आना, फिर मैं इंतजाम करता हूं, मोक्ष सुख के साधन का इंतजाम तब तक कर लेता हूं। क्या तुम वहां धर्म नहीं छोड़ोगे तो वज्रषभ नारायण सनन का बंद भी करोगे, और फिर उसके फलस्वरूप तुम मनुष्य गति में ही आओगे, मनुष्य बनोगे, और वह वज्रषभ नारायण सनन मोक्ष प्राप्ति का प्रथम साधन है। ये इंतजाम चिंता मत करना, मांगना मत, मांगोगे तो कुछ नहीं दूंगा मांगोगे तो कुछ नहीं दूंगा, बिन मांगे ये सब मिलते हैं, टारगेट में मोक्ष सुख को रखो और कर्तव्य करते जाओ, रत्नत्रय का पालन हमारा कर्तव्य है ये समझ करके रत्नत्रय का पालन करते करते जाना। तो धर्म देखो कैसे व्यवस्था करता है, हमको कोई ईश्वर व्यवस्था नहीं करते, हमको कोई देव देवता व्यवस्था नहीं करते, हमको कोई गुरु व्यवस्था नहीं करते, हमके कोई देव शास्त्र गुरु भी व्यवस्था नहीं करते, हमारी व्यवस्था हमारा धर्म करता है। देव शास्त्र गुरु को निभाना, रत्नत्रय को निभाना, ये दोनों, इन दोनों को निभाना हमारा केवल एक कर्तव्य है, है कि नहीं, ये दोनों कर्तव्य की कोटि में आते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में रहो, ये कर्तव्य है या धर्म है, ये कर्तव्य, और उस कर्तव्य के करते समय जो धर्म होता है वो हम में आत्मा में होता है, आत्मा की परिणति सम्यक दर्शन, उनके शरण में रहने से सम्यक की उपलब्धि हमें हुई, वो हमारा धर्म, सम्यक तो धर्म, ज्ञान धर्म, चारित्र धर्म, ये हमारे लिए बाह्य में साधन, इनके शरण में रहने से इनकी रक्षा होती है, दर्शन ज्ञान और चारित्र की रक्षा सतत करने के लिए, इनको निर्दोष रखने के लिए किसके शरण में जाएं हम, बाह्य में किस माहौल में रहे, किस संगति में रहे, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति में रहे, ये संगति हमारे लिए बहुत बहुत आगे बढ़ाती है। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होता, जब हमारे पास इतना अनुभव नहीं होता, जब हमारे पास इतना विवेक नहीं होता, जब तब ये तीनों काम में आते हैं। हमारे दुख के दिनों में तुम बड़े याद आते हो, आते ही है। गुरु याद नहीं आएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे, जिनवानी माँ याद नहीं आएगी तो कौन याद आएगा आपको? दुनिया का याद, दुनिया का स्मरण करना अनर्थ है, उसमें तो पाप कर्म का बंध ही बंध है। पर देव शास्त्र गुरु का स्मरण हुआ ना, ये निर्जरा का कारण, संवर का कारण, और उनके पास जाकर सत्संग कर लेना, ये तो अनुभूति ही अनुभूति है। कौन सी अनुभूति? अलौकिक अनुभूति। अभी यहाँ कैसा लग रहा है देखो, सुनते सुनते यही परिणाम घर में रहते हैं संभव है? इधर को उधर गेट के बाहर जाते ही वही लोग दिखते हैं जो भागा दौड़ी कर रहे हैं विषय कषाय के लिए। अर्थ धर्म के लिए है यही पता नहीं। काम दीपक जलाने के लिए यही पता नहीं। मोक्ष स्वतंत्र होने के लिए है यही पता नहीं। मोक्ष चतुर्गति से मुक्त होने के लिए है यही पता नहीं। आर्यखंड में जन्मे जीवों को काम केवल दीपक जलाने तक सीमित है, और इससे ज्यादा कुछ हम चाहते हैं तो गुनाहगार अपराधी। और इस अपराध में जो कर्म का बंध होता है उसको धोना तो पड़ेगा, चाहे आज धो लो चाहे कल धो लो, धोना तो अपने को ही है। कीचड़ में पैर डालने से पहले सोच के डाले कि डालूं कि नहीं डालूं, डालना हो तो फिर धोने के लिए जल भी मिलना चाहिए, घर में जल है क्या नहीं सोच के। पैर कीचड़ होते हैं तो सोचना तो पड़ेगा कि धोने के लिए पानी है क्या नहीं। फिर विषय कषायों में प्रवृत्ति होते ही कर्म का आश्रव बंध शुरू होता है, ये तो मालूम है ना। ये आश्रव और निर्जरा तत्व पर, बंध तत्व पर श्रद्धा तो है, तो आश्रव और बंध तत्व है, निर्जरा और संवर तत्व उपादेय है, ये इस प्रकार हे उपादेय पर श्रद्धा तो है ना। हे तत्व को हे समझना, उपादेय तत्व को उपादेय समझना, ये हमारा हमारी साधना है। और आर्यखंड का कलम ये बता रहा है कि ये गुनाह है, तो अपने को क्या करना चाहिए? एक बार पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, बहुत समझ में आ गया, बहुत ज्ञान हो गया, आप क्या स्वर्ग में जाने के बाद देखेंगे? अब बचे 30-40 साल साधना के लिए बचे, और वृद्धावस्था आने के बाद तो क्या इंद्रियां सब हार जाती हैं, शरीर थक जाता है। लोग मिलिट्री में जाते हैं जवानी में जाते हैं कि वृद्धावस्था में? यहाँ वृद्ध क्या बंदूक पकड़ेगा, क्या गोली मारेगा, उनके हाथ पांव ही कप रहे हैं, गोली किधर जाएगी क्या मालूम, अपनी सेना पर भी पहुंच सकती गोली। मिलिट्री में जाना जवानी में होता है, और जवानी के दिन खोना नहीं, ये आर्यखंड का कलम बता रहा है। अच्छे परिवर्तन का समय आ रहा है। अपने जीवन के मूल्यांकन को समझाने के लिए हमने आज का प्रवचन किया, नहीं तो विषय यहीं रुक गया। ये 8 दिन में तैयारी करना है मन को, मन बहुत खराब होता है, अज्ञानी है वो, उसको ज्ञान दिलाना है। हे मन, ये आर्यखंड का कलम तो देख ले, क्या करने जा रहा है अनर्थ, इसको भोगना तुमको ही पड़ेगा। उपदेश दे दो, अपने मन को मान लेगा वो, तैयार हो जाएगा। मन एक बच्चा है, आप कुछ नहीं समझाओगे तो उदम मचाएगा, और समझाओगे मान भी लेगा, बच्चा है, आपका ही बच्चा है। बेटा ये क्या कर रहा है, उपदेश सुन करके आए, ये करता है। समझा दो, धीरे 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 समझा दो, उसको मान जाएगा। अब नहीं, बहुत हो गया, साधना के लिए समय निकालो। जीवन के बचे 40 साल, किसी के 30 साल, किसी के 20 साल और किसी के 10 ही साल, किसी के 10 ही साल, 80 के हिसाब से लगा लेना। अस्सी के हिसाब से विचार करना। हाँ,
अभी आपका जो प्रवचन हुआ,
मिला है,
और काम तो सभी ने किया है,
जलाया है,
वो कैसा मिलेगा?
देखो, सब कुछ काम हो गए हैं, हम एक एक ही सेंटेंस में उत्तर देंगे। हाँ हाँ, देखो देखो, एक ही सेंटेंस में हम उत्तर दे रहे हैं। आपकी जिज्ञासा है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये बताओ। हमने सब जलाया है, दीपक जलाया है, सभी काम, अर्थ पुरुषार्थ भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ कैसे करे, अब क्या? तो कुछ नहीं करना, कुछ करने के लिए जाओगे तो सब जल जाएगा। कुछ नहीं सोचना, आत्मा आत्मा है, 40 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, इसका चिंतन करना, और इस अमूल्य अमृतमय समय को साधना में लगाना। ये अमृत है जो बचा हुआ है, जो गिर के गटर में जा रहा है। इस स्रोत को सही दिशा दो, ये जो बह रहा है, इस प्रवाह को मोड़ो। केवल 10 साल बचे, और आर्यखंड का कलम यह है कि आप वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर सकते, धर्म होगा ही नहीं। तो जवानी में कम से कम 10 साल पहले तो मिलिट्री में जाओ, पूरे थक गए और एडमिशन मांग रहे हैं, वहां कैसे लेंगे? रिटायर्ड होने का समय आ गया, और उस समय में मिलिट्री में परमिशन मांग रहे हैं कि हम भी आए, क्या हमको ले लो। तो मिलिट्री वाले भी तो सहज रूप से कहते हैं, 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा? धर्म करने के लिए भी चेतना चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, तन मन और वचन, जब तक ये स्वस्थ रहते हैं तब तक ही धर्म हो सकता है। वृद्धावस्था में तो वो तो रिटायर्ड होने का समय है, सल्लेखना की साधना का समय है वो, पर लड़ाई का साधन साधना है प्रतिमा, ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि, ये लड़ाई के काम है। ये कब होना चाहिए, इसका भी तो समय है ना, इसके पीछे भी तो कलम लगे हुए है ना। एंड टाइम में सल्लेखना कभी नहीं हो सकती, जिसके पास व्रत नहीं, जिसने मैदान में युद्ध नहीं किया, अखाड़े में कुश्ती नहीं खेला, वो क्या वृद्धावस्था में कुश्ती खेलेगा? वृद्धावस्था तो जो पहलवान दशा है उसको त्याग करने के लिए मिलता है। हम अब पहलवान नहीं हैं, हम अंतिम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जितना जितने लोगों को जीतना था सबको धराशायी कर दिया, अब मेरा काम संपन्न हो गया, अब मैं आत्मा में डूबकर, मेरा कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे जो शत्रु थे सब चले गए, मेरे को अनिष्ट पहुँचाने वाले कोई भी नहीं है, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध भगवान के समान सिद्ध परमिष्टि हूँ, ये कहते कहते आत्म ध्यान करते करते जब प्राण छोड़ेंगे तब मोक्ष मिलेगा, ये अंतिम धर्म पुरुषार्थ। मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं, ये संलग्ना के टाइम में पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये अंतिम धर्म पुरुषार्थ। ये शरीर मेरा नहीं, ये भी यहीं पर छूटने वाला है। ये कर्म मेरे नहीं, ये कर्म भी यहीं पर छूटने वाले हैं। चिंतन करना है, समय हो गया, चिंतन बहुत करना है। आजीवन अब नहीं, गुनाह नहीं करना, जानबूझकर गुनाह नहीं, आजीवन 10 साल साधना करो ब्रह्मचर्य व्रत का। जीवन का कोई भरोसा भी नहीं, 1 मिनट के बाद का भरोसा नहीं, और 80 के हिसाब से सोचो कितने साल रह गए, और जितने ज्यादा रहते हैं उतना अच्छा, क्योंकि वो जितने समय तक तुम लड़ाई करोगे उतने ही कर्म रूपी शत्रु तुमसे हार जाएंगे। सभी व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत, सभी व्रतों में पवित्र व्रत ब्रह्मचर्य, सभी व्रतों में महान पवित्र और सभी व्रतों का जान प्राण ब्रह्मचर्य, उसके बिना सारे व्रत। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है, जैसे फूल माला में डोरी होती है ना, वो डोरी के समान होता है ब्रह्मचर्य व्रत। अन्य व्रत सभी फूल के समान, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत डोरी के समान, यानी सबका प्राण, सबका आधार, सबका जान और सबका अनुशासन एक ही लाइन में खड़ा कर दिया उसने। ऐ व्रत ऐसा खड़ा हो जाओ तो फूल ऐसा कहता हाँ ठीक, खिसक जाता है वो। धागे के पास कितनी शक्ति है, वो सभी फूलों को हिला सकता है, आदेश दे सकता है, एक अनुशासनबद्ध रहो, जब किसी के गले में जाते हैं तो ऐसे हो जाओ तो ऐसे ही हो जाओ, मानना पड़ेगा फूलों को, धागा धागे की बात सूत्र की बात मानना पड़ेगा। सोचना है आर्यखंड का कलम क्या है, समझा दिया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। काम पुरुषार्थ आर्यखंड में जन्मे हैं तो केवल कुल दीपक जलाने के लिए मात्र होता है, विशेष सेवन के लिए नहीं। अर्थ पुरुषार्थ धर्म के लिए होता है, क्योंकि आर्यखंड है, यहाँ आने वाला धर्म ही करे, इसलिए धर्म पुरुषार्थ सर्वप्रथम रखा है। अर्थ को कमाओ कोई बात नहीं, पर धर्म पालन करने के लिए अर्थ को स्वीकार करो। धर्म रत्नत्रय ही होता है, मुनि धर्म की रक्षा के लिए अर्थ पुरुषार्थ है, और स्वयं के शरीर की रक्षा के लिए अर्थ पुरुषार्थ है। मुनि है तो इस धरती पर धर्म है, मुनि ही नहीं है तो इस धरती पर धर्म ही नहीं है। धर्म की भूमिका है फिर, दर्शन और ज्ञान को धारण करने वाले जीव धर्म की भूमिका में रहते, धर्म की भूमिका है और धर्मात्मा कोई है ही नहीं तो फिर क्या है। धर्म तीर्थ जीवित है मुनि धर्म में, धर्म दो ही प्रकार के, मुनि धर्म श्रावक धर्म, तो श्रावक अर्थ पुरुषार्थ जो करता है धर्म की रक्षा के लिए, पर धर्म कभी भी अर्थ के लिए नहीं करता। धर्म क्यों कर रहे, अर्थ कमाने के लिए, ऐसा ये उल्टा कलम है। अर्थ पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, धर्म के लिए, ये सही है। तो ये समझ करके चिंतन करके तैयारी करना है, समय आ गया 13 तारीख को पिंची परिवर्तन। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।